हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 24। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपरांतिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद पांचवा अध्याय जिसका शीर्षक है नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश देना। कृपया मेरे साथ श्लोक उच्चारण कीजिए। नारद मुनि कह रहे हैं, ते मय्य पिता खिल चापलिर्भके दान्ते धृत क्रीडन केनो वर्तिनी चक्रु कृपां यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणी। ते मय्य पिता खिल चापलिर्भके दान्ते धृत क्रीडन केनु वर्तिने चक्रु कृपां यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणे। ते मय्य पिता खिल चापलिर्भके दान्ते धृत क्रीडन केनु वर्तिने चक्रु कृपां यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणे। ते मय्य पिता खिल चापलिर्भके दान्ते धृत क्रीडन केनु वर्षिणी चक्रु कृपां यद्यपितुल्यदर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषे ते मय्यपीता खिल चापलिर्भके दान्ते धृतक्रीडनकेनुवर्तिनी चक्रुः कृपां यद्यपितुल्यदर्शिनः शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणि ते मय्यपीता खिल चापलिर्भके दान्ते धृतक्रीडनकेनुवर्तिनि चक्रुः कृपां यद्यपितुल्यदर्शना शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषिणि। शब्दों का अर्थ। ते मतलब वे, मई मतलब मुझ में, अपेत अर्थात ना भोग कर, अखिल सभी प्रकार की, चापले अर्थात रुचियां, अर्भ के बालक में, दान्ते अर्थात इंद्रियों को वश में करके, अधृत क्रीडन के अर्थात खेल कूद की आदत का अभ्यस्त न होकर, अनुवर्तिनी यानी जिज्ञा आज्ञाकारी, चक्रुः अर्थात प्रदान किया, कृपाम अहितु की कृपा, यद्यपि अर्थात यद्यपि, तुल्य दर्शना निष्पक्ष, शुश्रूषमाणे अर्थात श्रद्धावान के प्रति, मुनयो वेदांत के अनुयायी मुनिगण, अल्पभाषणे मत भाषी अर्थात कम बोलने वाला। अनुवाद। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत वादियों ने मुझ पर अहितु की कृपा की। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रियजित था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल ना था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता भी नहीं था, मत भाषिणी था। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का कथन है, सारे वेद मेरी खोज करते हैं, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि वेदों के केवल तीन विषय हैं, भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, भक्ति कर्म करना तथा इस प्रकार से भगवत दान लाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। इस तरह इन वेदांतवादियों से भगवान के शुद्ध भक्त सूचित होते हैं। ऐसे वेदांतवादी या भक्ति वेदांत भक्त के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। उनके लिए ना कोई मित्र है, ना कोई शत्रु, ना कोई शिक्षित है और ना ही अशिक्षित, ना कोई विशेष रूप से अनुकूल है और ना ही प्रतिकूल है। भक्ति वेदांतगण यह देखते हैं कि लोग सामान्य रूप से झूठी कामोद्दीपक वस्तुओं में अपना समय गंवाते हैं। उनका कार्य है अज्ञानी जनता के भगवान से भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना। ऐसे प्रयास से विस्मृत से विस्मृत जीव को भी आध्यात्मिक जीवों का बोध हो जाता है और भक्ति वेदांतों द्वारा प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। इस प्रकार वेदांतवादियों ने उस बालक को इंद्रियजित बनने के पूर्व ही दीक्षित कर लिया था और वह बचपन के खेल कूद से विरक्त हो गया था, किंतु दीक्षा के पूर्व वह बालक अत्यधिक अनुशासित हो चुका था, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। वास्तविक मानव जीवन के शुभारंभ में वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में बालकों को 5 वर्षों की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने के लिए भेज दिया जाता है, जहां उन्हें यह सारी चीजें नियमित ढंग से सिखाई जाती हैं, चाहे वे सामान्य नागरिकों के पुत्र हों या राजकुमार हों। यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के लिए अनिवार्य था, अपितु बालक को भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए तैयार करने के लिए भी। वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग का अनुत्तरदायित्व पूर्ण जीवन अज्ञात था। यहाँ तक कि जब पिता बालक को माता के गर्भ में स्थापित करता था तो वह भी आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता था। बालक को भावबंधन से मुक्त कराकर उसे सफलता दिलाना माता पिता का उत्तरदायित्व होता था। यही पहली सफल परिवार नियोजन ही विधि थी। इसका उद्देश्य था पूर्ण सफलता के लिए संतान उत्पन्न करना। इंद्रियजित हुए बिना, अनुशासित हुए बिना तथा पूर्णतया आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और ऐसा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। पहला स्कंद, पांचवा अध्याय, श्लोक नंबर 24। नारद मुनि अपने विषय में बोलना प्रारंभ कर चुके हैं। हमारा सौभाग्य है कि भगवान के परम जो भक्त हैं, जिनके संपर्क में आज तक जो भी आया उसे भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। तो हमें भी हृदय में यही इच्छा रखनी चाहिए कि क्योंकि नारद मुनि का प्रसंग आया है तो नारद जो कि नारायण को देने वाले हैं अवश्य हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न करेंगे। कल नारद मुनि ने बताया कि अहम पुरातीत भवे भव मुने दासस्तु कस्याश जनवेद वादिना, कि मैं पहले कल्प में था और एक ऐसी दासी जो कि वेदवादिना जो वेद वेदांतवादी भागवत भक्त थे उनकी सेवा करती थी। निरूपितो बालक एव योगी नाम, क्योंकि मैं उनका पुत्र था और मैं भी अपनी माता के साथ उनकी सेवा करता था। शुश्रूषणे प्राविशि निर्विवेक्षिताम, जब चतुर्मास में वर्षा के कारण वो सब सन्यासी लोग जो वेदांती थे वो हमारे यहाँ आकर रुके थे तो मैंने भी उनकी सेवा बड़े प्रेम से की। और आज नारद मुनि अपने बचपन के स्वभाव के विषय में बता रहे हैं कि मैं बचपन में कैसा था और उन सब वेदांतवादियों की मुझ पर कृपा किस कारण से हुई। वे कहते हैं, ते मैय पेता खेल चापले भके। ते का मतलब होता है वो वेदांतवादी जो हमारे पास आए थे, उन्होंने मुझ में मई मना मुझ में ऐसा उन्होंने मेरे अंदर ये क्वालिटी देखी। आज नारद मुनि अपनी क्वालिटीज के विषय में ऐसा नहीं है कि वो अपने विषय में बताकर ये बताना चाह रहे हैं कि मैं कितना अच्छा होता था, ये बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में यदि आप किसी शुद्ध भक्त की, किसी वैष्णव की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? शुद्ध भक्त बनने के लिए, शुद्ध भक्त का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए, शुद्ध भक्तों अथवा शुद्ध भक्तों का मतलब है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए यदि आप चाहते हो तो आपके अंदर कोई ना कोई पात्रता होनी चाहिए। वास्तव में भक्तों, वैसे तो शुद्ध भक्त, श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताया कि शुद्ध भक्त जो होते हैं और जो भगवान होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं। उनको ये नहीं होता है कि भाई कोई अमीर होना चाहिए या ज्ञानी होना चाहिए या बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना चाहिए या शिक्षित होना चाहिए, इसमें नहीं है। कोई ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, बुद्धिमान हो या बुद्धिहीन हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा सबके ऊपर होती है। लेकिन फिर भी का मतलब है कि पात्र, यदि कोई योग्य पात्र प्राप्त हो जाता है ना तो वो खुद ही भर जाता है। पात्र का मतलब समझ लो आप, एक ऐसा कंटेनर हो। वर्षा तो सबके लिए होती है ना, ऐसा नहीं है कि वर्षा सोचे कि नहीं यहाँ पर मैं यहाँ पर नहीं बरस रही हूँ, मैं वहां पर बरस रही हूँ। हर जगह पर बरस रही होती है, लेकिन अगर हम कोई पात्र वहां पर रख देते ना, जैसे पात्र मीन्स कोई ऐसा डिश हो, बाल्टी हो, जिसके अंदर पानी भरा जा सके, तो अगर पात्र रखा होगा तो क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा पानी उसमें भर जाएगा। उसी तरह से कृपा तो बरस रही है, भगवान की कृपा बरस रही है, संतों की कृपा बरस रही है, शुद्ध वैष्णवों की कृपा बरस रही है, लेकिन हमें भी तो अपना पात्र सीधा करके रखना है। अगर वही बाल्टी या वो डिश जो है वो वर्षा में रखा हुआ है परंतु उल्टा रखा होगा तो कैसे भरेगा, नहीं भर सकेगा ना। तो यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं कि देखो, भगवान की कृपा तो बरसती है और सब पे बरसती है, लेकिन मेरे अंदर क्या क्वालिटी थी जिसके कारण मैंने उस कृपा को अपने अंदर ग्रहण किया। तो यहाँ पर सबसे पहले बता रहे हैं कि चापले भ्रके, हालांकि मैं बालक था लेकिन फिर भी अपेत, मतलब भोग, ये जो पेमय पेता खिला चापले भर के, मैं बिल्कुल छोटा बालक था लेकिन फिर भी किसी भी चीज में, भौतिक वस्तुओं में मुझे कोई रुचि नहीं थी, भोग करने की रुचि नहीं थी। और दांती का मतलब होता है इंद्रियों को वश में करके। ऐसा नहीं है कि मैं इंद्रियों के वश में था, ये चाहिए वो चाहिए खाना। अभी आगे बताएंगे कि पूरा दिन मैं भूखा रह जाता था, लेकिन जब तक संत लोग खाते नहीं थे, कुछ बचाते थे तब जाके खाता था मैं, उनसे पहले नहीं। तो इंद्रियों को वश में करके बैठे हुए करा हुआ था। और अधित्य क्रीडनके, क्रीडनके मतलब स्पोर्ट्स में खेल कूद की आदत का अभ्यस्त नहीं था। मतलब ऐसा भी नहीं है कि अभी संत आए हुए हैं और मैं चला जाऊं। आज के बच्चों को हम देखते हैं कि भले कोई भी कीर्तन का प्रोग्राम होता है या भक्ति का कोई प्रोग्राम होता है, उनको बस खेलना ही आता है, बस खेलने जाके। घर में भी ज्यादातर पूरा दिन या तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेंगे या मोबाइल में गेम्स खेल रहे होंगे या फिर कोई भी इंटरटेनमेंट। उनको ऐसा लगता ही है, हमारे आज की जनरेशन को पता ही है कि हम अगर स्कूल में नहीं है तो हमारे खेलने का टाइम है। स्कूल और ट्यूशन चलो ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद अभी तो आया हूँ मैं, खेलो नहीं क्या हर वक्त? बस मैं या तो जप करूंगा क्या, माला करूंगा, मैं तो इतना थका हुआ हूँ। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, या तो ये भौतिक एजुकेशन प्राप्त करना या इंजॉय करना, बस और कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर ये नारद मुनि बता रहे हैं अद्वित क्रीडनके, खेल कूद में मुझे बिल्कुल भी आनंद नहीं आता था। और अनुवर्तिना, बहुत ही सुंदर शब्द है जो कि वाकई में अगर किसी के अंदर ये आ जाए ना भाव, का मतलब होता है अनुवर्तिना का मतलब होता है आज्ञाकारी। जो भी मुझे आज्ञा दी जाती थी मैं उसका पालन करता था। और चक्रुः यानी प्रदान किया कृपां, इसके कारण अब मेरे अंदर क्या क्वालिटीज थी कि मुझे भौतिक भोगों के अंदर कोई रुचि नहीं थी। हालांकि बालक था और देखा जाए तो लड़का था, है ना, बॉयज को तो बहुत ज्यादा है ना इंटरेस्ट होता है खेल कूद में। लेकिन बोल रहे हैं नारद मुनि कि मुझे इंद्रियों को कंट्रोल किया था दांते अद्रित स्पीड है खेल। इंद्रियों को वश में किया था, खेल कूद में कोई भी आनंद नहीं आता था और आज्ञाकारी था, जिसके कारण प्रसन्न होकर मुझे अहितु की कृपा प्राप्त की हुई उन ऋषियों की। चक्रु कृपा यद्यपि तुल्य दर्शना, देखो बोला ना, यद्यपि वो जो भक्त होते हैं, जो भगवान के शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो तुल्य दर्शना होते हैं। तुल्य दर्शना का मतलब होता है वो कभी देखते नहीं है कि इस पे कृपा करूं इस पे नहीं करूं, लेकिन मेरे अंदर की ये क्वालिटी ऐसी थी कि उनका हृदय से आशीर्वाद निकल ही गया। क्या क्या क्वालिटीज थी कि मुझे भौतिक वस्तुओं में कोई आनंद नहीं आता था, मैं बालक होने के बावजूद भी खेल कूदों में कोई भी आनंद नहीं लेता था और आज्ञा सबकी मानता था, तो जिसके कारण अहितु की कृपा। देखो ये नारद मुनि हमारे पास एक ज्वलंत प्रमाण है, जिनको केवल वैष्णवों की सेवा से देवर्षि का पद मिल रहा है। यानी कोई पिछला कोई शुभ कर्म नहीं है, ना भगवान की सेवा की है, ना बड़े बड़े श्लोक से याद किए हैं, ना कुछ, लेकिन वैष्णवों की सेवा करना कितना इम्पोर्टेंट है वो नारद मुनि के अनंत जीवन से हमें पता चलता है कि कितनी कृपा प्राप्त हो सकती है। और तुल्य दर्शना का मतलब होता है निष्पक्ष है, शुश्रूषमाणे यानी श्रद्धावान के प्रति। कृपा ज्यादा किसको मिलती है, जिसको श्रद्धा जिसके पास हो। पहले उन्होंने बताया ना नारद मुनि ने, शुश्रूषमाणे प्रवर्षी प्रावर्षी निर्विविक्षताम, के जब चार मास चतुर्मास होते थे तो मैं सेवा करता था, और आज बोलते हैं श्रद्धावान था, मैं श्रद्धा से सेवा करता था, जिसके कारण मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई। मुनयः, मुनयः मतलब वेदांत के अनुयायी मुनिगण, जो वेद को समझते हैं, यानी कि जो शास्त्र के अध्ययन। अभी मुनय का मतलब होता है वेदांत को जिन्होंने बिल्कुल सही तरह से समझा हो, और वेदांत का सार श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें बताते हैं अपने तात्पर्य में कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि वेदों को केवल तीन विषय हैं। कौन से तीन विषय हैं? एक तो संबंध, दूसरा अभिदेह और तीसरा प्रयोजन। बस ये तीन विषय हैं वेदों में। सबसे पहले क्या? संबंध। संबंध मतलब कि जीवों के साथ भगवान क्या क्या संबंध है। जैसे हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। भगवान कहते हैं ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, समस्त जितने भी जीव हैं वो मेरा अंश हैं। भगवान कहते हैं 9.17 में, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं पिता हूँ मैं माता हूँ। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया अहम बीज प्रदत्त पिता, तुम्हारा बीज देने वाला पिता मैं हूँ। और भगवान अपने संबंध के विषय में बताते वेदों में, और उसके बाद क्या है? अभिदेह। अभिदेह मतलब आपको पता चल गया कि अब भगवान के साथ आपका क्या संबंध है, तो खाली पता चल जाना इज नॉट इनफ। किसी पत्नी को पता चल जाए कि ये मेरा पति है, यानी कि जो शादी हो जाए और पता चल जाए पति है, तो पता चल जाना काफी है नहीं, फिर उसको क्या करना है? उसकी सेवा करनी है। वो अपने जो भी रूल है, जो रेगुलेशंस है, जो अपने नियत कर्म है, उनको पूरा करना है, पति की सेवा करनी। उसी तरह से आपको जब पता चल जाए कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान ही हमारा स्रोत है, भगवान की सेवा करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, इतना पता चल जाना काफी नहीं, फिर क्या? अभिदेह। फिर भगवान की सेवा करनी है। कैसे सेवा करनी? भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, भगवान की कथाओं का श्रवण करना है, जो भी आपको खाना है वो पहले भगवान को अर्पण करके फिर खाना है, भगवान की विग्रह सेवा करनी है, भगवान की आरती करनी है, भगवान का श्रृंगार करना, यानी कि भगवान के साथ संबंध को जानकर फिर उस संबंध के अंदर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पूरी करनी है। अभिदेह के बाद प्रयोजन, कि मैं क्यों कर रहा हूँ, संबंध को क्यों जानूं और वो सेवा अभिदेह क्यों करूं, प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? भगवत धाम की प्राप्ति है ना। प्रयोजन क्या है? कि मैं अब अपने वास्तविक अस्तित्व को प्राप्त करना चाहता हूँ, वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करके भगवान के धाम जाना चाहता हूँ। तो जो भी वेद है उसमें ये तीन विषय बताए गए हैं, और जो ये तीन विषयों के बारे में बिल्कुल सही तरह से समझ जाता है उसको बोलते हैं वेदांती ब्राह्मण। और नारद मुनि एक अत्यंत ही सुंदर क्वालिटी के विषय में बता रहे हैं कि अल्पभाषिण। अल्पभाषिण का मतलब होता है कि मत भाषी, मैं बहुत कम बोलने वाला था, मैं चपल नहीं था, मैं भौतिक इंद्रियों की वस्तुओं में आनंद नहीं लेता था, मैं खेल कूद में भी ज्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं लेता था। और सबसे अत्यधिक बहुत ही सुंदर बात है अल्पभाषी, मैं ज्यादा बोलता नहीं था, फिजूल बकबक। जैसे आजकल के बच्चे, उनको पता ही नहीं होता है, फिजूल में बस बोलते रहते हैं, गाने गाएंगे, उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, ये करेंगे। लेकिन ये नारद जी की क्वालिटीज हैं। वापस से एक बार हम अनुवाद को पढ़ेंगे ताकि हमारे माइंड में ये बैठे कि यदि हम वाकई में किसी शुद्ध वैष्णव की कृपा प्राप्त करना चाहते तो हमारे अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। वे कहते हैं, यद्यपि मैं स्वभाव से निष्पक्ष थे, यानी कि जो वेदांती ब्राह्मण वैष्णव भक्त जो थे वो स्वभाव से निष्पक्ष थे। उनको ये नहीं था कि इस पे कृपा करूं उस पे नहीं करूं, वो तो निष्पक्ष थे। किंतु उन वेदांतवादियों ने मुझ पर अहितु की कृपा की, लेकिन फिर भी चक्रु कृपा यद्यपि तुल्य दर्शना, उन्होंने कृपा की लेकिन वो खुद तो तुल्य दर्शना थे। क्योंकि जहां तक मेरी बात थी, अब वो अपनी बात बता रहे हैं कि मैं क्या था, दांते धृत क्रीडन केन वर्तिता, कि मैं इंद्रियों तथा इंद्रियों को इंद्रिय जीत था, और बालक होने पर भी मैं खेलकूद में अनासक्त था, खेलकूद के प्रति कोई भी मुझे आसक्ति नहीं थी, साथ ही मैं चपल ना था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता भी नहीं था। वास्तव में भक्तों, ये क्वालिटीज अगर हमारे अंदर आ जाती हैं, क्योंकि भौतिक इंद्रिय तृप्ति में यदि कोई गरक होगा तो क्या बैठ के संतों की बात सुनेगा, खेलकूद में यदि किसी को इतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो कहाँ से जाकर उसको भक्ति में आनंद आएगा, जप करने में आनंद आएगा। और वो जो फिजूल में सारा दिन बोलता रहेगा, बक बक करते रहेंगे, उन्हें कभी भगवान के चरित्र को सुनने में, भगवान की लीलाओं को, कथाओं को श्रवण करने में और उनके विषय में सीखने में, बोलने में आनंद नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपना आनंद किसी गलत जगह पर ढूंढ लिया है। लेकिन जिसको भौतिक वस्तुओं में आनंद नहीं आता है तो उसके लिए आध्यात्मिक वस्तु को ग्रहण करना बहुत ही सहज हो जाता है। इसे यदि हम चाहते हैं कि हमें भी भक्ति में आनंद आए तो इन भौतिक वस्तुओं के आनंद को हमें परित्याग करना पड़ेगा। वास्तव में भक्तों, दोनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते। आध्यात्मिकता में अगर उन्नति करनी है तो भौतिकता से दूर रहना पड़ेगा। और श्रील प्रभुपाद जी ने अत्यंत सुंदर बताया है तात्पर्य में, वर्णाश्रम के विषय में, कि वास्तव में मानव जीवन स्टार्ट कब होता है, वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली जो है हमारी। वर्णाश्रम धर्म में क्या होता था, बालकों को 5 साल की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने के लिए भेज दिया जाता था। फिर 5 से लेकर 25 साल तक वो केवल और केवल अध्ययन करता था, कोई भौतिक वस्तुएं नहीं, कोई जो कामों देखते। यहाँ पर आज क्या है, आज हम अपने बच्चों को सारा दिन बस वही टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर पे वो कामुक दृश्य, वो इतने अश्लील दृश्य दिखाते हैं जिनसे उनकी काम वासना उत्तेजित होती है। सारा वातावरण का इतना हमने जो वातावरण दिया है ना अपने संतान को, इसके कारण फिर हम उनको दोष भी नहीं दे सकते। तो पहले उनको ब्रह्मचारी बनने के लिए शिक्षा दी जाती थी और सारी चीजें जो करते थे वो नियमित ढंग से, यानी कि ऐसा नहीं है कि उनको खेलने, लेकिन बॉयज होते थे वो अपने हिसाब से उनको अच्छे अच्छे गेम्स भी खिलाई जाती थी, भक्ति के विषय में रामायण महाभारत के अना प्रसंग के हिसाब से सिखाया जाता था। और चाहे कोई साधारण लोग होते थे ना, अगर सामान्य नागरिक होते थे या राजकुमार होते थे, उनको यही शिक्षण दिया जाता था। केवल अच्छे नागरिक बनने के लिए ही वो काफी नहीं था, लेकिन वो भविष्य में एक अच्छा जीवन उनको प्राप्त हो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। बचपन में पूरा उसका ध्यान जो वो वेद अध्ययन में, शास्त्र अध्ययन में। अभी देखो हमारे बच्चे 25-30 साल के हो जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता शास्त्र में क्या लिखा है, भगवत गीता में क्या लिखा है, भागवतम में क्या लिखा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो मनुष्य जीवन मिला है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, आपको ये वेद शास्त्र, श्रीमद भगवत गीता, भागवतम, तो ये तो अब शादी से पहले ही सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं हमारे शास्त्र में, कैसे हमें जीवन बिताना है कैसे नहीं बिताना है हर चीज के विषय में। यहाँ पर तो श्री प्रभुपाद जी ने ये बता दिया कि वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने वाले बालकों को इंद्रिय भोग का उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन अज्ञात था, वो उनको पता ही नहीं होता था कि भौतिक जीवन होता कैसे है, वासना क्या होती है, काम इच्छा क्या होती है। यहाँ तक कि जब पिता बालक को माता के गर्भ में स्थापित करता था, क्या कंडीशन बता रहे हैं, उस समय भी आध्यात्मिक संस्कार द्वारा होता था, वो काम नहीं होता था। आज जो काम के कारण जो संतान उत्पत्ति होती है वो नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संस्कार के द्वारा ये भी होता था, गर्भदान संस्कार होता था, बालक को बहुबंधन से मुक्त कराकर उसे सफलता दिलाना माता पिता का उत्तरदायित्व होता है। माता शास्त्र तो यहाँ तक कहता है पिता न सस्यात् माता न जननी न सस्यात् गुरु न, वो पिता पिता कहलाने के योग्य नहीं है, वो माता माता कहलाने के योग्य नहीं है, वो गुरु गुरु कहलाने के योग्य नहीं है जो अपने मातहत को भगवान तक ना पहुंचा सके। जिसको जो भगवान तक आप अगर अपने बने अपने बच्चों को कितना ही कमा कमा कर दे दो, बड़े बड़े बंगलोस लेकर गाड़ियां लेकर, यदि आपने उसको जीवन का लक्ष्य नहीं बताया तो शास्त्र आपको माता पिता कहने का अधिकार नहीं देता। तो यही श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पहले जब संतान उत्पत्ति करते थे तो उसका उद्देश्य क्या था, पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए। अगर विवाह करते थे तो संतान उत्पन्न करने के लिए, केवल काम इच्छा तभी ना, वो संभोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए होता था। और संतान की उत्पत्ति होती थी ताकि उसको शुद्ध भक्त बना सके और जीवन जीवन की परिपूर्णता, जीवन की सफलता प्राप्त हो सके। और यहाँ पर नारद मुनि ने जो अपने गुण बताए हैं कि मैं बिल्कुल अनुशासित होता था, मैं भौतिक वस्तुओं में रुचि नहीं रखता था, खेल कूद में रुचि नहीं रखता था और आज्ञाकारी होता था। तो श्रील प्रभुपाद जी अंत में अत्यंत ही सुंदर बता रहे हैं कि अनुशासित हुए बिना तथा पूर्णतया आज्ञाकारी हुए बिना कोई भी व्यक्ति गुरु के उपदेशों का पालन करने में सफल नहीं हो सकता। अगर आप गुरु के उपदेशों का आज्ञा का पालन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके जीवन में अनुशासन होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए, नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं जब दिल चाहे उठो, जब दिल चाहे खाओ, जब दिल चाहे खेलने चले जाओ। आपका जीवन जो है वो नियमित अनुशासित होना चाहिए और आज्ञाकारी। यदि हमको आज्ञा नहीं हम पालन करेंगे तो फिर कैसे हम गुरु के उपदेशों का ग्रहण कर सकेंगे। जब तक ये दोनों चीजें हमारे अंदर नहीं आती है तो तब नहीं हो सकता है। और ऐसा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक अनुशासन नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, हम भौतिक इंद्रियों में, इंद्रिय तृप्ति में इतना आसक्त हैं, भौतिक वस्तुओं के प्रति इतनी ज्यादा इच्छा है कि हम ये खाएं वो खाएं, ये खेलें वो खेलें, उधर जाएं ये जाएं, जब तक इतना ज्यादा हमारे अंदर रेस्टलेस है ना जीवन, अगर शांति नहीं है भौतिक वस्तुओं की और इतना आकर्षण है, तो फिर हम गुरु आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। और जब तक गुरु आज्ञा का पालन उपदेशों को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक भगवान की प्राप्ति करना असंभव है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। हरे कृष्ण।